आपदा दे रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके पूर्व पहले हमारे कवि कर्णपुर जी ने और इसके बाद में बलदेव विद्याभूषण इत्यादि ने महाप्रभु उन्हीं के संप्रदाय को ग्रहण किया है, इस प्रकार से उल्लेख है। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी मध्वाचार्य की शाखा में लक्ष्मीपति शिष्य से लिया, किंतु लक्ष्मीपति पति के शिष्यों में कोई पूरी थे इन्होंने पूरी किसी सन्यासी से इन्होंने हमारे माधवेंद्र पूरी बात की सन्यास लिया। और देखते हैं अद्वैताचार्य पुंडरीक विद्यानिधि नित्यानंद प्रभु जितने हमारे लोग हैं सब एक ही धारा में माधवेंद्र पूरी पाद से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं। इसलिए हमारे आचार्य जो ने विशेष रचित भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये विचार किया है, जो लोग मध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय की साथ नहीं करते और विशेष करके मध्वाचार्य को अपना संप्रदाय गुरु नहीं मानते और बलदेव विद्याभूषण को भी अलग निकाल करके रख लेते हैं, वे लोग कली के चेले हैं, वो लोग शुद्ध वैष्णव नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का मत लेकर के हम लोगों को उत्तर करना चाहिए।
ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মা থেকে তিনি কৃষ্ণের আরাধনা করেন, ভগবানের দর্শন লাভ করেন, কামগায়ত্রী গোপাল মন্ত্র তিনি প্রাপ্ত করেন, বেশ শাস্ত্র তাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই পরম্পরায় তিনি নারদ ঋষিকে দিলেন, নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে প্রদান করেন, ব্যাসদেব থেকে শ্রীমন মধ্বাচার্য প্রাপ্ত করেন। এই জন্য সেই ব্রহ্ম বিদ্যার নাম হলো এই পরম্পরার নাম হলো শ্রী ব্রহ্ম মাধ্ব অর্থাৎ শ্রীমন মধ্বাচার্য, যিনি উড়ুপিতে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাহার দক্ষিণে কর্ণাটক দেশে কর্ণাটকের নিকট বেঙ্গালুরের কাছাকাছি সেইখানে বাজেটার ক্ষেত্রে উড়ুপিতে তাহার আবির্ভাব হয় এবং তিনি ছিলেন হনুমত ভীম বায়ু অবতার। পূর্বে তিনি হনুমান ছিলেন, যিনি ভীমসেন ছিলেন, সেই হনুমান ভীমসেন এবং বায়ুর অবতার হলেন শ্রীমন মধ্বাচার্য, মহা শক্তিশালী ছিলেন, সময়ে সময়ে অনেক কিছু তিনি খেয়ে ফেলতেন আর এত শক্তিশালী ছিলেন যে আর শক্তির কোন ইয়ত্তা ছিল না, আর সব থেকে বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই থেকে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, আপনারা শ্রবণ করেছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এই জন্য দক্ষিণ ভারতে যে যত মায়াবাদী ছিল সমস্ত মায়াবাদীগণের মায়াবাদ বিচারকে খণ্ডন করেই তিনি ব্যাসদেবের আজ্ঞায় বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই জন্য শ্রীমৎ মধ্বাচার্যকে বলা হয় হনুমত ভীম বায়ু অবতার। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য পঞ্চভেদ স্বীকার করে তিনি বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ স্থাপনা করেন। চার বৈষ্ণব আচার্য শ্রী রামানু সম্প্রদায়, শ্রী শ্রীমৎ মধ্ব সম্প্রদায় আর শ্রী বিষ্ণু স্বামী শ্রী নিম্বাদিত্য। শ্রী রামানু সম্প্রদায়ের বেদান্তের ভাষ্যের নাম হল শ্রী ভাষ্য আর শ্রীমন মধ্বাচার্য যে ভাষ্য করলেন তাহার নাম অনুভাষ্য, অনুভাষ্য বৃহৎ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য অনুব্যাখ্যান। এইভাবে শ্রীমদ মধ্যাচার্য তিনি বিশদ ভাবে প্রচার করেন আর তিনি মায়াবাদকে খণ্ডন করেন। সেই জন্য প্রথমে তিনি পাঁচটি ভেদ স্বীকার করেছেন, আপনারা এখানে শ্রবণ করেছেন। পাঁচটি ভেদ হল জীবে জীবে, প্রথমে জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ, ঈশ্বর এবং জড়ের মধ্যে ভেদ, জড়ে জড়ের মধ্যে ভেদ, জীব এবং জীবের মধ্যে ভেদ। এইভাবে ভেদগুলি স্বীকার করেছেন, পাঁচটি ভেদের কথা বললেন। যতদিন পর্যন্ত যে ভেদ না থাকে ততদিন পর্যন্ত ভক্ত ভগবানের মধুর মিলন বা মধুর সম্বন্ধ হয়ে উঠতে পারে না। যেখানে অভেদ হয়ে যাচ্ছে, দুই বস্তু মিলে এক হয়ে যায়, সেখানে কোনোদিন প্রেম সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ হতে পারে না। ভগবান বৃহৎ বস্তু, ব্যাপক বস্তু এবং জীব অরূপ বস্তু, জীব অরূপ চৈতন্য, অতএব ঈশ্বরেরই অংশ, তাহার মধ্যে ভেদ থাকে, ভেদ কোনোদিন মিলতে পারে না। এই জন্য শ্রীমদ মধ্যাচার্য তিনি শ্রীমদ ভগবত গীতার উপরে টীকা করেছেন। তো তাহার মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, মমই অংশ জীব লোকে জীব ভূত সনাতন, জীব আমারই অংশ কিন্তু জীব রূপে নিত্য সনাতন, অতএব যে কোনোদিন মিলে ভগবানের সঙ্গে এক হতে পারে না।
সোনার আভূষণ গুলি গলিয়ে দিয়ে একটা সোনার পিণ্ড হয়ে গেছে, এ কথা সত্য।
কিন্তু এখন গোলানোর জন্য একজন ব্যক্তি চাই, যিনি সরকার তিনি গোলাইতে পারবেন, সোনা গলিয়ে তিনি একটা পিণ্ড তৈরি করবেন, আবার নির্মাতা স্বর্ণতা তিনি কি করেন বিভিন্ন প্রকারের আভূষণ তৈরি করেন। প্রথম সূত্রেই ব্রহ্মের শক্তির প্রতিপাদন করা হয়েছে। তাহারা বলে থাকেন যে ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিশেষ নিঃশক্তি নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন নিরুপাধি, অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন শক্তি নাই, তাহার রূপ নাই, তাহার গুণ নাই, এই সবগুলি বলেই তাহারা নাস্তিকতাকে বা মিথ্যাবাদকেই তাহারা প্রতিপাদন করে থাকে। এই জন্য শ্রীমন মধ্যাচার্য পূর্বকালেতে তিনি সব মতবাদ গুলিকে খণ্ডন করেন। তিনি বললেন না, মহাপ্রভু বললেন কি, অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের শক্তি এই শব্দের মধ্যেই আছে, যেহেতু বৃহৎ ধাতু মন প্রত্যয় করে ব্রহ্ম শব্দ হয়েছে। বৃহৎ ধাতুর অর্থ হল বৃহৎ ব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং বৃহৎ এবং অপরকে বড় করবার ক্ষমতা যিনি রাখেন তাহাকে বলা হয় ব্রহ্ম। তদ্রূপভাবে বললেন কি, যাহার মধ্যে বড় করবার ক্ষমতা আছে সবাইকে যিনি বৃহৎ করে থাকেন তিনি হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক রূপে শক্তি আছে। এই জন্য শ্রীমন মধ্যাচার্য তিনি কি করলেন, সমস্ত শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়ে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, বললেন কি, তন্তু ঔপনিষদম পুরুষম পৃচ্ছামি। সেই ঔপনিষদ পুরুষকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। এখন বেদান্তের মধ্যে বললেন উপনিষদে বর্ণিত পুরুষ, সেই পরম পুরুষকে তিনি হলেন শ্রুতির প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাহার কথা বলতে গিয়ে বললেন কি, নতস্য কার্যম করণস্য বিদ্যতে নতস্য সমস্যাভ্যধিকস্য দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ অর্থ পরাশক্তি বিবিধা এব শ্রূয়তে। লোহার মধ্যে যেমন অগ্নি প্রবেশ হয়ে যায়, আগুনের মধ্যে একটি লোহাকে ফেলে দিলে গরম হয়ে যায়, লাল হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার লোহা যেমনি তেমনি হয়ে যায়। তদ্রূপ ভাবে ব্রহ্ম কখনো শক্তি ধারণ করেন আর তখন শক্তি স্বরূপ হয়ে জগতে আসেন, আবার নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয়ে বিলীন হয়ে যায়। তদ্রূপ ভাবে ভগবান এইভাবে আসেন এবং যান, নিরাকার ব্রহ্ম হয়ে যায়। তো এখন বেদান্তের মধ্যে বলছেন কি, নতু তাদাত্মিকি, তাদাত্মিকি নয় স্বাভাবিকই, ভগবান নিত্য শক্তি যুক্ত। এই জন্য বেদান্তের মধ্যে বললেন কি, শক্তি শক্তি মতর অভেদ, শক্তি এবং শক্তি অভেদ বস্তু তাহার মধ্যে ভেদ নাই। এই জন্য শ্রীমন মধ্যাচার্য ভগবানকে তিনি সর্বশক্তিমান রূপে স্বীকার করেছেন। বেদান্ত সূত্রের দ্বারা তিনি প্রতিপাদন করলেন ভেদ ব্যাপদেশা, ভেদ ব্যাপদেশা। বেদান্ত শাস্ত্রের মধ্যে ভগবান এবং জীব, ভগবান এবং মায়া, ভগবান এবং জড় বস্তু প্রত্যেকের মধ্যে ভেদ আছে। এই ভেদ যদি নিত্য স্বীকার না করা যায় তাহলে বেদান্ত সূত্রকেই উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জন্য বেদান্তের মধ্যে ভেদ ব্যাপদেশা শব্দ একবার নয় বহুবার বলে কিন্তু একভাবে তিনি বললেন কি, জন্মাদস্য যতন সৃষ্টির স্থিতি প্রলয় তিনি করেছেন, সেই সৃষ্টির স্থিতি প্রলয়কর্তা ভগবান তিনি হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি হলেন সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ নির্গুণ কেবল এইটি ভেদ, যা যা শ্রুতির জলপতি নির্বিশেষ
और श्रीमद भागवत ब्रह्म सूत्र टू और सूत्र आर इन टेन तो यू शुड श्योरली रिमेम्बर अदरवाइज यू विल बी डिफेटेड बाय मायावती. He told so many sutras. So, पहले बतलाया कि रामचंद्र आज लंका रावण के विजय के लिए यात्रा किया. यद्यपि सीता जी पर शक्ति है, उनको रावण छू सकता है कि नहीं? कैन रावण टच सीता, रियल सीता? नहीं छू सकता. किंतु कैसे छू लिया? उनको चुरा करके जबरदस्ती पकड़ करके ले गया. फॉर सेफ्टी वी किडनैप सीता विथ हो एंड शी वाज क्राइंग बिकॉज वो बहुत जोर से रो रही थी, छटपटा रही थी, रावण के हाथ से छूट नहीं की. वाई वाई बिकॉज राम वांटेड शी फॉलोड द ऑर्डर एंड दैट सीता वाज आल्सो नॉट रियल सीता. वो सीता जी नहीं थी, वो माया सीता जी असल सीता को अग्नि में राम ने दे दिया था. लक्ष्मण को भी नहीं बतलाया. नेवर सेड दिस टू लक्ष्मण आल्सो. व्हाई व्हेन इन लंका ही किल्ड रावण एंड ऑल कुंभकर्ण मेघनाथ एंड ऑल हिज एसोसिएट्स एंड देन इन द लास्ट राम ऑर्डर Division, that is you should bring Sita. And he was bringing her in a palki. And all wanted to see, all monkeys were very eager to see. उनको देखने के लिए उत्सुक थे. Ram told, Sita should come on walking. Why in palki? Those who have given life and soul for me, all the monkeys, they want to see. So why not she should come on foot? And that is by Sita. वो उतर गई पालकी से और फूट आने लगी. जब निकट आई, when she came near, then Ram told, I don't want to accept you. You go get everywhere you want, anywhere. You should go. And Lakhan can go anywhere. Ram told that Sita is telling that you should bring some fuel and take it in fire. And she will fight. Refuse to obey Ram. I cannot follow you. Ram was telling that listen me, I don't want to listen. Then what became? Ram told, listen me, why you are so
agitated?
And he told him, yes, oh this Sita. Maya Sita. In Panchavati, I gave Sita to
Agnidev.
Fire. Now I want to take it from fire. Dave. So, you should tolerate some of 5 minutes for me. Why you could not tell me? Why you could not? Oh. If I have told, then have the same with open that by past time will let me. And then fireball, big fireball. There, and Sita went inside. No burning, nothing. Agni Dev came and told that Sita is
pure.
Okay, she is pure.
Dasarata.
Raman cannot touch her. So, until now Mayapad was acting there on the post of Sita. And now fire, Titi came and then he just produced Sita Devi from her and he gave it to Ramchandra. Secret, so many things. Now come to Krishna. And then Ram was very upset for Sita. Even Shankar could not know. Shankar knew, not
Parvati.
Parvati could not know. Janki Yukmani used to. But no. Uma. So, he had a friendship with a monkey. His name was Sugriv. She was also deprived of her wife. His wife was kidnapped by Bali. So he was helpless because Bali was so much strong. So he made friendship so Hanuman. And after some time, Sugriv sent. Bali was killed, and after that, Hanuman was sent to Lanka. And he jumped. So many obstacles came in the way. But see, he went in Lanka, discovered with the help of Vibhishan. And then, he took all the fruits of Ashok Vatika and then killed his son Akshay Kumar and others. And then he kept fire in whole golden Lanka. And it was totally burnt. And then he took some Chandrahar. Ramchandra Murti Chir.
Chudamani.
And then he came to Ram and gave. And then the tree was done on ocean and thus they invaded Lanka and Lanka was finished. This is whole Ramayana.
राधिका जी का महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, हे देवी सुनो, इन तीनों जगतों में या तीनों जगतों के और तीनों जगतों से ऊपर वैकुंठ आदि धाम में ऐसी कौन सी रमणी है जो तुम्हारे समान प्रेमवती होने का साहस भी मन ही मन भी कर सके। मैं तुम्हारे इन गुणों का वर्णन कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती सरस्वती देवी की सभा में मैंने सुना है। ये मेरे वचन नहीं, मेरे वचन नहीं, उस सभा में मैं जो कुछ सुना वो सब मैं कह रही हूँ। तुम्हारे गुणों को श्रवण कर, हृदय में तुमसे मिलने के लिए बड़ी उत्कंठा हुई और तुम्हें तुमसे मिलकर मेरी अभिलाषा पूर्ण तो हुई, किंतु हमारे हृदय में एक बहुत संताप दुख उत्पन्न हुआ। दुख की अग्नि ज्वलित हुई और उसके ताप से मेरी अंतरात्मा बड़ी तप्त हो रही है, दुखी हो रही है, न जाने क्यों फट नहीं रही। उस ब्रजंगना की प्रेम भरी बात को सुनकर प्रेमवती राधिका जी ने कहा, सखी तुम्हें क्या संताप है, तुम बतलाती नहीं हो। वो कौन सा संताप है जिसको तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे। तुम निसंकोच होकर के उस बात को हमारे निकट बतलाओ। राधिका, बार बार प्रश्न करने पर भी देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोलना चाह करके भी बोल नहीं सके, उनका कंठ रुद्ध हो गया, वो कुछ बतला नहीं सके। राधिका तो स्वयं बड़ी मधुर स्वभाव की है, अपने अंचल से उस देवी के मुख को और आंख के आंसुओं को पोंछा और पोंछने लगी। उस समय में श्री कृष्ण की आंतरिक गभीर दुख की जो अभिनय था, दुख का अभिनय, ये लोग तो समझ नहीं सके किंतु कृष्ण अभिनय कर रहे थे। उसको सत्य बतलाने के लिए, उसे सचमुच यह सत्य है, मेरी दशा जो है सत्य है, मुझे बहुत ही दुख है, उसको प्रतिपन्न करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए रोने लगे। तब उसी समय पुनः दिवंगनाधारी वेशधारी श्री कृष्ण कुछ समय तक ऐसी कुछ चुप रहने के बाद अंत में धैर्य धारण कर राधिका से बोले, हे मुग्धे, कृष्ण बड़े कामुक हैं, उनमें बहुत गुण हैं, सब गुणों से संपन्न है, किंतु अत्यंत कामुक है। तुम्हारा उस कामुक कृष्ण से प्रेम कैसे हो गया। इस जगत में तुम्हारे प्रेम की कोई भी तुलना नहीं है और तुम्हारे प्रेम में तनिक भी कोई उपाधि नहीं है, कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है। और यह कामना वैसी होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती और इसका वेग इतना प्रबल है तुम्हारे प्रेम का कि किसी प्रकार से उसे रोका नहीं जा सकता, कोई नहीं रोक सकता। किंतु समझो, जानबूझ करके भी यदि कोई अयोग्य स्थान में विश्वास स्थापन करता है, उसे प्रीति करता है, तो केवल अपने को और दूसरों को दुखी प्रदान करता है। क्या तात्पर्य? तुम्हारा प्रेम निश्चल है, सब कुछ ठीक है, किंतु तुम्हारा प्रेम जो लग गया है जिससे, वो कामुक अस्थिर चंचल वाले व्यक्ति से, इसलिए तुम भी दुखी रहेगी सब समय, समझो। कहाँ गए श्री कृष्ण? रूप माधुर्य वीरत्व श्रेष्ठ सौभाग्य और जस आदि गुण संपत्ति से परिपूर्ण है, उनके सब त्रिलोक में कोई नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। सब गुण से विभूषित होने पर भी प्रेम की विवेचना उनके अंदर नहीं है। अर्थात प्रेम के संबंध में विचार करने की उनको सामर्थ्य नहीं है। बस यही एक दोष उनके सारों गुणों को नष्ट कर देता है, बस एक गुण। और से कामुकता ही उनके समस्त मूल मुख जो दोष है उनका एक है, एक ही कारण है। अतएव इस प्रकार के व्यक्ति से को प्रेमी के रूप में ग्रहण करना, उसे प्रेम करना कदापि उचित नहीं है। देखो रास के दिन में तुम्हारे सहित नित्य किया, तरह तरह से विलास किया, और बारंबार तुम्हारे प्रति कृत्रिम बनावटी प्रेम प्रकाश किया, और पीछे तुम सारी सरलमति वाली तुमको रात में कुंज के बीच में बुला करके भी ये वहां मेरे साथ में अभिसार करना आना, अभिसार कराया, और घोर कपटी कृष्ण वहां नहीं आकर के एक दूसरी जगह जाकर दूसरी रमणी के साथ में के पास में चले गए और तुम्हें छोड़ दिया। क्या समझा? इतना कपटी टूटता है कि तुमको बुलाया कुंज में और वहां ना जाकर के वो दूसरी रमणी के पास में चला गया। ये भी मैंने देखा, और उस समय तुम विलाप कर रही थी, और उसे समझ कर सब सखियां बड़ी दुखित थी। वन की लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी सभी रो रहे थे तुम्हारे लिए, तुम रो रही थी इसलिए वो लोग भी रो रहे हैं। और मैं बंसीपट में रहकर अलक्षित रूप में ये सब देख रहा था, तुम भी रो रही है, पशु पक्षी सब लोग रो रहे हैं, किंतु वो कपटी उसका चित्त नहीं रोया। इन सब बातों का तात्पर्य यह है राधिका को कृष्ण के विरह में मोहनाख्य महाभाव उदित होता है। मोहनाख्य भाव उदित होने पर प्रेम वैचित्र इत्यादि विविध प्रकार की दशाएं होती हैं, अपस्मार घृणा इत्यादि होती है, और उस समय ब्रह्मांड को भी क्षोभ होता है, उसका क्षोभ देखकर दुख देखकर। तिर्यक प्राणी भी, तिर्यक माने पशु वृक्ष तथा इत्यादि प्राणी भी रोदन करते हैं, रोदन करने लगते हैं। ये वो अनख्य महाभाव का कार्य है। इसलिए समझो कि उस समय में कृष्ण के पीड़ा में जब ये रोदन कर रही थी, उनको मोहनाख्य भाव उदित हुआ और पशु प्राणी सब रोने लगे। उज्जल ने नीलमणि ग्रंथ में स्थाई भाव प्रकरण में इस सब का उल्लेख किया गया है। इसलिए यहाँ पर भी वृक्ष लता इत्यादि रोदन करने लगे, ऐसा उल्लेख। अब देवंगना वेशधारी श्री कृष्ण फिर बोलने लगे, ये सब कौन कह रहा? कृष्ण ही कह रहे। इस प्रकार रास रजनी में जब रास हो रही थी रात में, तुम्हारे साथ में नित्य इत्यादि कर रहे हैं और कृष्ण समस्त ब्रज सुंदरियों को छोड़ करके केवल मात्र तुमको लेकर के अंतरहित हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए और तुम्हारे प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाया, किंतु कुछ क्षण तक ही तुम्हारे साथ में रहे और तुम उस समय में ये कहा कि मैं थक गई हूं, मैं चल नहीं सकती, अब तुम कहीं ले करके मुझे चल सकते हो, और ऐसा कहकर ज्यों ही तुम उनके कंधे पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत हुई और तुम्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। तुम्हारे जोर से क्रंदन विलाप और छड़छड़ में मूर्छा और नाना प्रकार की चेष्टाओं और उन दशाओं को दशाएं हुई ओहो, मैं सारा जीवन क्या बहुत जन्मों में भी उस दुखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और दुख की बात तो क्या कहूं, जन्म मृत्यु जरा इत्यादि देह की जो आठ दशाएं हैं उन किसी में भी तुम्हारे इस दुख को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं जाता। हृदय मेरा सब समय तप्त रहता है और रहेगा। हे यशस्विनी देवी, मैं देवी हूं, हमारे हृदय में क्या कभी जागतिक वस्तुओं को देखने से, जागतिक लोगों के दुख को देखने से हमें दुख हो सकता है? नहीं। फिर भी हाय हाय, किसी भगवत इच्छा से मैं किसी अशुभ अवस्था क्षण में मैं तुम्हें देखने के लिए मैं आई, और मैं तुम्हें देख करके तुम्हारे दुख को देख करके वह दुख शेल की भांति मेरे हृदय में बिंद हो रहा है। सखी वह शेल शूल हमारे हृदय से कैसे निकल जाए, कोई भी उपाय नहीं देखता जिससे कि हमारा वो शूल निकल सके। आप टिप्पणी में बतला रहे हैं इन सब श्लोकों में देवांगनाधारी श्री कृष्ण अपनी ही निंदा अपने आप कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? श्रीमती राधिका की प्रीति, कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता को परीक्षा करना चाहते हैं। मेरे पति राधिका का प्रेम कितना गंभीर है इसकी परीक्षा करना चाहते हैं। इस प्रकार का की निंदा सुन करके भी यदि प्रीति भंग हो जाती है या बिंदु मात्र भी कम जाती है तो नहीं यदि कमती है तो जगत में ऐसी स्वच्छ प्रीति, उपाधि रहित प्रीति का उत्कर्ष जगत में प्रतिष्ठित होगा। इसे समझो, कृष्ण निंदा कर रहे हैं कृष्ण की, और इतने पर भी राधिका की प्रीति कम नहीं हुई, तो क्या समझ आ जाएगा? यही निश्चय ही शुद्ध प्रीति है। इस प्रकार निंदा सुनने पर भी प्रेमी प्रेम मुकुटमणि राधिका राधिका के हृदय में जो प्रेम है, उससे निकले हुए जो वचन है, ये वचन सुधा अमृत है, उसको सुनने के लिए ही कृष्ण ने इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, इस प्रकार रोना दिखलाया। सब राधिका क्या कहती है, मेरी निंदा को सुन करके, जिसको हम प्यार करते हैं और उसकी निंदा यदि की जाए और तभी प्रेम बढ़े, तो वो प्रेम सच्चा है, और प्रेम कम जाए या प्रेम छूट जाए, गोपियों ने उद्धव से यही प्रश्न किया किंतु उत्तर नहीं दे सके। राधिका जी होती तो शायद उत्तर दे दे।